Manthan.
ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए जैव अर्थव्यवस्था 2035 हरित अर्थव्यवस्था के लिए भारत के रोडमैप पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान TRI के सतत विकास अनुसंधान केंद्र में वरिष्ठ फेलो और निदेशक डॉक्टर शैली केडिया। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अमित गोयल।
नमस्कार, बायो इकोनॉमी 2035 के बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शैली केडिया। डॉक्टर शैली, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
नमस्ते, धन्यवाद।
डॉक्टर शैली, जैविक अर्थव्यवस्था बायो इकोनॉमी कुछ नया टर्म है, तो इसको किस तरह से देखते हैं और हमारे श्रोताओं को सरल शब्दों में इसके मायने समझा सके।
जब हम बायो इकोनॉमी की बात करते हैं या जैविक अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो सरल शब्द में कहूँ तो जैव अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जिसमें पौधे, पशुओं, सूक्ष्म जीवों, कोशिकाओं और जितनी जो रेन्यूएबल बायोलॉजिकल सोर्सेस होते हैं उसका यूज करके हम अलग अलग चीजों में उसका यूज करते हैं, जैसे कि हम दवाइयां हो, भोजन हो, ईंधन हो, रसायन हो, सामग्री हो, हम उसका उपयोग ये सारे चीजों में करते हैं और हम अर्थव्यवस्था के प्रति उसको कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। तीन शब्दों में अगर आप इसको समझना चाहें, जिस तरीके से इंडिया में इसको देखा जा रहा है या ग्लोबली भी देखा जा रहा है, एक तो जैसे उस शब्द में ही है जैव अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था बहुत जरूरी है, दूसरा रोजगार और तीसरा पर्यावरण। तो हम जब इंडिया में उसको बोलते हैं तो बायो E3 पॉलिसी बोलते हैं, तो बेसिकली बायो इकोनॉमी फॉर इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें ये तीन शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे हमें हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकते हैं, फूड सिक्योरिटी हो सकता है। अभी हम देखें तो बहुत चर्चा में हॉर्मूज है, उसके कारण हमें कैसे एनर्जी सिक्योरिटी और पेट्रोल नेचुरल गैस इंपोर्ट्स जो हम करते हैं उससे हमें कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो उसके एनर्जी सिक्योरिटी में भी बायो इकोनॉमी से हमारा लाइक रिड्यूस डिपेंडेंस हो सकता है फ्रॉम पेट्रोलियम एंड इम्पोर्ट्स, एंड ऑल्सो लोअर पोल्यूशन और डेफिनेटली जैसे रोजगार की हम बात करते हैं।
आपने कहा कि बहुत सारा इसका विस्तृत व्यापक अर्थ है, तो मोटे तौर पर इसमें कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं, कौन कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं?
एकदम मोटा मोटा देखा जाए तो अभी जस्ट 4-5 दिन पहले नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है, तो उसमें आप देखा जाए तो 4 क्षेत्र होते हैं। एक होता है आपका जैव औद्योगिक क्षेत्र, बायो इंडस्ट्रियल जिसको बोलते हैं, जिसमें आपका बायो फ्यूल हो जाता है जो ईंधन के प्रति काम आता है, इंडस्ट्रियल एंजाइम्स आता है, केमिकल्स होते हैं, बायो प्लास्टिक्स होते हैं, आजकल प्लास्टिक भी बड़ी बड़ी समस्या है। दूसरा एक क्षेत्र है जैव फार्मा, इसको बायो फार्मा या जो आपके स्वास्थ्य के थ्रू, वैक्सीन के थ्रू हो, कोविड के टाइम भी इंडिया में पूरे वर्ल्ड एक वैक्सीन रेस में जुट गई थी, बायोसिमिलर डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट, एंटीबॉडीज, जीन थेरेपीज, तो ये सारे बायो फार्मा और हेल्थ क्षेत्र में आते हैं। दूसरा है आपका जैविक कृषि, विच इज बायो एग्रीकल्चर, जिसमें आप देखा जाए तो जैविक कीटनाशक या फिर आपके बायो फर्टिलाइजर, बायो खाद्य जो होते हैं, बायो स्टिम्युलेंट्स और इवन बायो सर्टिफाइड फूड न्यूट्रिशन के लिए, और क्लाइमेट रेजिलियंट क्रॉप, देखते जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उससे निपटने के लिए ड्रॉट रेजिलियंट क्रॉप्स हो गया, तो ये आपका जैव कृषि में आता है। और चौथा है आपका जैव सेवाएं और अनुसंधान। अगेन आप देख रहे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको आप अगर यूज करके, आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स फील्ड में यूज करें, क्लिनिकल रिसर्च में यूज करें, तो उससे बहुत ही बारीक लेवल का रिसर्च हो सकता है, डेटा एनालिसिस हो सकता है, और जैसे जिससे आपके नए नए दवाएं की खोज हो सकती है।
औद्योगिकरण एक महत्वपूर्ण जरूरत है अगर हम रोजगार की बात करते हैं या हम उत्पादन की बात करते हैं, तो अगर बायो इंडस्ट्री का जिस तरह से आपने जिक्र किया, जिसमें बायो फ्यूल की भी आपने बात करी, बायो प्लास्टिक की भी बात करी, इस बारे में बताएं ये किस तरीके से पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए हमारे लिए एक रोजगार का साधन भी उपलब्ध करा सकता है और अर्थव्यवस्था को सहारा भी दे सकता है।
तो जैसे कि हम बायो इंडस्ट्री में, मैं जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल बायो फ्यूल का बात कर ले, बायो गैस की बात कर ले, तो हम जो आप समझ लीजिए कोयला या फिर कोई फॉसिल फ्यूल यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके जगह अगर हम बायोफ्यूल यूज करें तो एक तो वो पोल्यूशन कम क्रिएट करता है, दूसरा जो बाहर से फ्यूल आता है उस पर कम डिपेंडेंट रहना पड़ता है। एक दूसरा बड़ा एरिया है आपका प्लास्टिक्स। हम रोज प्लास्टिक्स यूज करते हैं, इंडस्ट्री में भी अलग अलग चीजों को पैक करने के लिए भी प्लास्टिक यूज करता है। अगर उसके जगह हम बायो प्लास्टिक्स यूज करें तो वो थोड़ा इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होता है, तो खेती भी उसी मात्रा में करनी पड़ेगी। उससे फिर रोजगार का ये लिंकेज है कि किसान को उससे रोजगार मिलेगा, और जो उसके जो बीच में जो उसके सप्लाई चेन है उसमें जितने लोग हैं उसमें रोजगार मिलेगा। और थोड़े से और आप थोड़े से हायर लेवल पे जाए तो रिसर्च में, या जो आपका जो बायोटेक वाला जो टेक्नोलॉजी सेक्टर रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट है उसमें भी काफी बढ़त हो सकती है।
जी, आपने जैसे औद्योगिकीकरण की बात करी तो इसमें आपने एक जिक्र किया था बायोप्लास्टिक का। प्लास्टिक निश्चित तौर पे पर्यावरण संरक्षण के लिए एक बहुत बड़ा आज के डेट में चुनौती है, तो ये बायोप्लास्टिक से इस खतरे को कितना कम किया जा सकता है?
तो डेफिनेटली जब हम बायोप्लास्टिक्स की बात करते हैं तो अभी फिलहाल जो भी मटेरियल है, फिलहाल अभी तक एक कोर R&D स्टेज पे है, जिसमें आप मटेरियल की बात करें कौन सा मटेरियल, उसमें आपका एल्गे भी आ सकता है, उसमें आपका जो क्रॉप रेसिड्यू होता है खेती करने के बाद जो पौधा बच जाता है उसको जलाने के जगह उसको आप यूज करें बायो पैकेजिंग में। तो क्योंकि प्लास्टिक्स आपके अलग अलग टाइप के पैकेजिंग में यूज होता है, आप जो भी सामान हम लाते हैं किराने की दुकान से ज्यादातर चीजों में वो चाहे वो उसमें वो प्लास्टिक पैकेजिंग में आता है, तो आप देखा जाए तो प्लास्टिक का यूज बहुत सारी चीजों में होता है। और अभी फिलहाल हम देखा जाए तो अगर हम वो सारा पैकेजिंग को ही रिड्यूस कर सके या रिप्लेस कर सके बायो पैकेजिंग से प्लास्टिक्स की जगह, तो आप सोचिए कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है। अब देखा जाए बायो प्लास्टिक अभी भी थोड़ा सा न्यू एरिया है, पर इसमें इसीलिए जो नीति आयोग ने अभी एक रोड मैप बनाया है वो इसमें कह रहा है कि आपको 50,000 करोड़ की एक फंड सेटअप किया जाए, उसमें और रिसर्च एंड डेवलपमेंट वायबिलिटी गैप फंडिंग के थ्रू ये सारी इनोवेशन को प्रमोट किया जाए जो आपकी एनवायरमेंट प्रॉब्लम, सोसाइटल प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करें।
आपने बताया 50,000 करोड़ का एक फंड नीति आयोग ने इसका प्रस्ताव किया है। अगर मोटे तौर पे अर्थव्यवस्था की हम बात करें तो इसका कितना व्यापक बाजार है, और अगर GDP यानी अर्थव्यवस्था में जो GDP का योगदान रहता है उसमें ये बायो इकोनॉमी का कितना योगदान फिलहाल है?
तो अगर हम देखा जाए तो बायो इकोनॉमी का कॉन्ट्रीब्यूशन GDP में काफी तेजी से बढ़ रहा है, और देखा जाए इंडिया में ही अगर हम 10 साल पहले 2014 के करीब हम देखें तो उसमें उस समय उसका बायो इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन $10 बिलियन के करीब, और अभी आज के दिन में करीब करीब 4.8% या समझ लीजिए लगभग 5% ऑफ GDP बायो इकोनॉमी बेस्ड सेक्टर से ऑलरेडी आ रही है। और इसका नीति आयोग ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को भी ध्यान में रखते हुए जो रिपोर्ट आया है उसमें ये तक प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि 2047 तक 2.6 ट्रिलियन GDP का कंट्रीब्यूशन उसको हो सकता है, और 2035 तक 6.91 बिलियन। बट हम देखा जाए तो अगर हमें पिछले 10 सालों में लगभग 10 टाइम्स इंक्रीज हुआ है उसका कंट्रीब्यूशन GDP को।
जी, मतलब 2014 में जो सिर्फ $10 अरब का बाजार था भारत की अर्थव्यवस्था में जिसका इतना योगदान था, वो अब बढ़ते बढ़ते 2025 तक वो तकरीबन $195 अरब तक पहुंच गए। तो बहुत बड़ा योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था में दे रहा है, तकरीबन 5% का अर्थव्यवस्था में इसका योगदान है। अब अगर हम बात करें तो इससे सीधे तौर पे कहीं ना कहीं रोजगार के सृजन में भी हमको काफी मदद मिलती होगी, और अभी आपने जिक्र किया था जो खेती के जो रेसिडुअल्स हैं, मतलब खेती में करने के बाद जो बच जाता है, जिस तरह से पराली जलाने की भी समस्या होती है, क्या खेती में इस बायो इकोनॉमी को या बायो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके भी हम उसका कुछ उपाय ढूंढ रहे हैं या ढूंढ चुके हैं?
डेफिनेटली अभी बहुत सारे प्रयास जारी हैं और कोशिश किया जा रहा है कि प्राली को यूज करके उससे पैकेजिंग मटेरियल या फिर उससे बायो एनर्जी बनाया जाए, उसको मशरूम ग्रो करने के काम में भी लिया जा रहा है, या उससे ईंट जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है उसके लिए भी यूज किया जा रहा है। पर उसके अलावा भी हम देखा जाए तो बायो इकोनॉमी का एग्रीकल्चर में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। अभी जैसे बताया जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ी समस्या है, तो उसके लिए देखा जाए तो सूखा, गर्मी, इन सबों को मतलब टॉलरेट करने वाली जो क्रॉप वेराइटीज है वो भी पार्ट है। फिर उसके बाद आप जो बोलते हैं कि जो इनपुट्स होते हैं एग्रीकल्चर में जो जाते हैं, चाहे वो खाद हो चाहे वो कीटनाशक हो, तो वो भी बायोपेस्टिसाइड उसमें यूज करके या बायो फर्टिलाइजर्स यूज करके आप सॉइल हेल्थ भी इंश्योर कर सकते हो और प्लांट प्रोडक्टिविटी भी इंश्योर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें, इनमें बहुत पोटेंशियल है आज के दिन में, बट ऑल्सो क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी इज ऑल्सो वेरी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेक्टर, तो उसमें आप देखा टेक्नोलॉजी हो, रिसर्च हो, इनोवेशन, इसमें भी बहुत सरकार को इन्वेस्ट करने की जरूरत है ताकि कि वो टेक्नोलॉजी को एक लैब से फील्ड में या एक लार्ज स्केल कमर्शियल एप्लीकेशन तक लेके जा सके।
आपने जैसे बताया कि बायोटेक्नोलॉजी का क्षेत्र अब उतना नया नहीं रह गया, लोगों की जागरूकता खासतौर पर इसके प्रति काफी हो गई है, तो सरकार ने भी इस पर बहुत विशेष ध्यान देना शुरू किया है और जिस तरह से अर्थव्यवस्था में भी इसका एक बहुत बड़ा योगदान है। क्या पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ जिस तरह से आपने बताया कि भी जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं उनसे बचाव करने के लिए ये जो बायो इकोनॉमी है, जैविक अर्थव्यवस्था है, वो सहायक या योगदान कर सकती है?
बिल्कुल, सबसे पहले ही जो बात की थी, फ्यूल की बात हो रही थी, एनर्जी की बात हो रही थी, अगर हम कोयला या फॉसिल फ्यूल के जगह हम बायो फ्यूल यूज करते हैं या बायो एनर्जी यूज करते हैं एक सही मात्रा में, तो उससे डेफिनेटली आप एक क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन की तो बात हम कर ही रहे हैं, पर एक जो एक क्लाइमेट अडेप्टेशन होता है स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो आप देखिए क्रॉप क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर बोल लीजिए या क्लाइमेट सेंसिटिव एग्रीकल्चर बोल लीजिए, तो वैसे टेक्नोलॉजीज वैसे क्रॉप्स अगर डेवलप हो जो ड्रॉट को सह पाए, तो इससे डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन और क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन दोनों में ही बहुत फायदा होगा।
जी, वैश्विक तौर पे अगर देखा जाए तो ये बायो इकोनॉमी का कितना बड़ा योगदान रहता है? फिलहाल अगर इसका आकार देखा जाए तो वैश्विक तौर पे कौन से देशों में बहुत ज्यादा अभी इसको प्रभावी तौर पे काम ले रहे हैं? इसे
वैश्विक तौर पे अगर देखा जाए तो उसमें आपके जो टॉप कंट्रीज है उसमें डेफिनेटली यूनाइटेड स्टेट्स है, वहाँ पे बहुत बड़ी फार्मा इंडस्ट्री भी है। यूरोपियन यूनियन में देखा जाए उधर भी मतलब काफी बड़ा योगदान है बायो इकोनॉमी का। तो ये सारे जो अभी आप देखें तो पूरे वर्ल्ड में ये बहुत सीरियसली लिया जा रहा है, एक ये नेक्स्ट टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन जैसे देखा जा रहा है, जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन था, तो ये ग्लोबल लेवल पे ये बहुत ही तेजी से ये सेक्टर उभर के आ रहा है, जिसमें आप देखें यूनाइटेड स्टेट्स हो, यूरोप हो, और आज के दिन में देखा जाए डेफिनेटली चाइना, चीन, वो भी बहुत तेजी से उभर के आ रहा है।
भारत सरकार ने आम लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए या इसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए क्या क्या अक्षर बनाए हैं और क्या इसका टारगेट रखा है, अगर आप संक्षेप में बता पाएं?
एक तरीके से देखा जाए आज के दिन में भी आप बायो इकोनॉमी या जैव अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो अभी भी मुझे लगता है कि एक तरीके से एक आम आदमी तक पहुंचने के लिए कि ये क्या है और उसको कैसे बेनिफिट हो सकता है, थोड़े से और प्रयास की जरूरत है। साइंस लेवल पे या साइंटिफिक कम्युनिटी लेवल पे आप देखें, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हो, तो ये सारे अपने बहुत सारे आउटरीच एक्टिविटीज करते रहते हैं, वेबिनार्स करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, रिसर्च पब्लिकेशन निकालते हैं, पर जैसे मेरे ख्याल से एक आम आदमी तक पहुंचने के लिए और उसको थोड़ा सा और सरल तरीके से वो मैसेज पहुंचाने के लिए, जैसे आप अपने रेडियो के माध्यम से इसको आपका ये प्रयास है, पर मुझे लगता है कि इसके बारे में अवेयरनेस, चाहे वो इससे लिंक्ड एजुकेशन रिलेटेड अवेयरनेस हो, कल को क्या क्या मतलब आज के दिन में हमारे इतने सारे युवा स्कूल में हैं, वो आगे सोचेंगे कि उनके पास और क्या करियर ऑप्शंस हैं, तो ये सब चीजों के बारे में, इसके स्कॉलरशिप के बारे में प्रमोट करने के लिए, इससे रिलेटेड जितने कोर्सेज है उसके बारे में जानकारी थोड़ा सा और एटलीस्ट आम आदमी तक पहुंचाने के लिए इसमें और प्रयास करने की जरूरत है।
जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे जैव अर्थव्यवस्था 2035, हरित अर्थव्यवस्था के लिए भारत के रोडमैप पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान TRI के सतत विकास अनुसंधान केंद्र में वरिष्ठ फेलो और निदेशक डॉक्टर शैली केडिया। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अमित गोयल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
मंथन।